اب کیا ہوتا ہے کہ مندر بن کر تیار ہو جاتا ہے اور کبیر صاحب وہ پرمیشور اپنے اس چبوترے پر چورے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمندر کی طرف ایسے کر لیتے ہیں اور سمندر اپنا پرتیشودھ لینے کے لیے اس مندر کو توڑنے کے لیے سمندر کھڑا ہوتا ہے 40 فٹ اونچا جیسے سائیکلوں ہوتا ہے اور ایسے پہاڑ سا نظر آتا ہے اور ایسے سپیڈ سے چل پڑتا ہے سمندر اس مندر کو جگن ناتھ جی کے مندر کو توڑنے کے لیے. اب جب نزدیک آ جاتا ہے 100 فٹ دوری پر وہ وہیں کا وہیں وہ جل جام ہو جاتا ہے جو کا تو ستھیر ہو جاتا ہے جتنی اونچائی پر 40 فٹ اونچا آگے نہیں بڑھ پا رہا. اب سمندر ایک ویپر روپ بنا کر برہمن کا روپ بنا کر باہر آیا اور کبیر پرمیشور جو بیٹھے تھے اپنے چورا پر چبوترا پہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا پربھو مجھے رستہ دے دو آگے جانے کو. کبیر صاحب نے پوچھا کیا کرے گا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں اس مندر کو توڑ کے آؤں گا. کبیر صاحب نے کہا کیوں بھائی کیوں توڑ رہا مندر میں؟ اس میں تو ودوان پرس رہا کریں گے, اس میں گیتا جی کا گیان ہوگا, پربھو کی ویاخیا کی جایا کرے گی, کلیوگ میں ادھار ہوگا, جو یہاں ست بھکتی پرچار ہوگا, کوئی برہم سادھنا بتانے والا کوئی سنت رہا کرے گا. کیوں توڑ رہا بھائی تو؟ تب سمندر نے کہا کہ اس نے شری کرشن نے شری رام روپ میں یہ وشنو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی جب سری لنکا پر دھاوا بولنا تھا اور میرے اوپر سے پل باندھا تھا زبردستی, میرے کو تیر دکھا کے اگنی بان دکھا کے مجھے سودر اور نیچ کہا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, لکشمن میرا اگنی بان دے اس سمندر کو پھونکوں گا, مجھے ڈرایا تھا, مجھے دمکایا تھا, مجھے سودر کہا تھا اور میں اس کا بدلہ لوں گا, میں اس کو اپنی چھاتی پر اپنے کنارے پر اس کا مندر نہیں بننے دوں گا اور پہلے بھی میں نے کئی بار توڑ دیا اس کا. کبیر صاحب نے کہا کہ نادان سادھو اور ایسے نہیں کرتے, آپ تو اچھی آتما ہو, یہ تو اچھا ستھان بن گیا, یہاں پر ستسنگ ہویا کرے گا, کوئی مورتی پوجا نہیں ہوگی اس میں اور اس کو بننے دے. سمندر کہنے لگا نہیں پربھو آپ ہٹ جاؤ. کبیر صاحب نے کہا کہ جا پھر, نہیں مانتا ہے تو جاؤ. تب سمندر نے کہا کہ پربھو آپ کی سمرتھتا کے سامنے اب میرے سے تس سے مس نہیں ہوا جا رہا, میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں, آپ رستہ دے دو. کبیر صاحب نے کہا بالکل نہیں. تو پھر کہا کہ جی میرے کو اس کا بدلہ دلاؤ کیونکہ یہاں پر بدلہ ضرور لیتے ہیں انسان, یہ ہمارے اندر ایک اور وشیش یہاں کی پریرنا رہتی ہے. کبیر صاحب نے کہا کہ ایسے کر, وہ دوارکا تو نے ڈگوت لی پہلے, اس کی شری کرشن کی وہ دوارکا تو نے پہلے بھی تو ختم کر دی تھی جب یادوں کا وناش ہوا تھا, شری کرشن کی مرتیو ہو گئی تھی تیر لگنے تے, تو نے ڈبو تو لیا تھا. تو اس نے کہا سمندر نے کہ ابھی بھی کچھ انس بقایا رہ گیا تھا, اب بھی بقایا رہتا ہے اس میں کافی حصہ. تب کبیر صاحب نے کہا کہ اب اس نے تو اور ڈبو لے, پر ادھر نہیں آ سکتا پوتر, چاہے تو ڈبو چاہے مت ڈبو, اس کا بدلہ لے چاہے مت لے, اب تو ادھر نہیں آ سکتا اور کان کھول کے سن لے, یدی آج کے بعد تو ادھر آ گیا نا اس مندر کے آس پاس تو میرے سے برا نہیں ہوگا, ہاتھ جوڑ کے کان پکڑ کے سمندر چلائے گا, پربھو آپ کے سامنے کس کی پار بساوے. اور جو بچا کچھ حصہ اور رہتا تھا دوارکا کا اس کو بھی اپنے جل مگن کر لیا. اس کے بعد یہ جگن ناتھ جی کے مندر کی ستھاپنا اور اس میں ودھیوت پوجا پرارمبھ ہوئی تھی, گیتا جی کا گیان کیا جاتا تھا, ست بھکتی ہوتی تھی. اب دھیرے دھیرے سمے زیادہ ہو گیا, اس کر کے اس کو اب پھر وہیں پر جاڑے جوڑے لگانے پہ जल के छीटे लगान पै के और दर्शन मात्रते हैं, कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। ये सब समय आने पर ये अनजान साधक संत उस प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। फिर समय अनुसार ये प्रक्रिया फिर प्रारंभ करवाता प्रभु अपनी कृपा दें, और शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना फिर प्रारंभ होती है। शास्त्र विरुद्ध साधना का फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका अंत होता है। अब ये शास्त्र विरुद्ध साधना का अंत होने का समय आ गया है। ये कितने दिन लगेंगे ये प्रभु की रजा है। ये कब हार मानेंगे ये नकली संत शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताने वाले, ये कब अपनी भूल स्वीकार करेंगे प्रभु के दोषी ना रहेंगे। मैं तो ये कामना करता हूँ प्रभु सोदी दे इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, ये झांके अपने आप में वो कितने दोषी हो रहे हैं हम गलत मार्गदर्शन करके, ये सोचें कभी बैठकर देखें इन शास्त्रों को और एक हो जावे यहाँ से पीछा छुटू आवे और प्रभु के गुण गावे मिलकर। अर्ध रात्रि बीत गई थी सोपन में दिखे घन श्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बनवा दे संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ विद्वान कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बनवा दे संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ विद्वान कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युगत की विधि बतावे जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युगत की विधि बतावे जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा उसके सरेंगे सारे काम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी स्वप्न में दिखे घन श्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। पांच बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना तेज समुद्र बने से। पांच बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना वो तेज समुद्र बने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे यो टूटे ना मेरे रहने से, छठी बार मंदिर बनवाया राजा न रानी के देने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे यो टूटे ना मेरे रहने से, छठी बार मंदिर बनवाया राजा न रानी के देने से। कहे श्री कृष्ण बोले यो कबीर पुरुष पूर्ण ब्रह्म यही है, इसके चरणों में कर जा प्रणाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, उसके चरणों में कर जा प्रणाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम, मंदिर इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चौरा बनवाओ जहाँ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कह कबीर एक चौरा बनवाओ जहाँ राम नाम गुण गाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। राम रूप में कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। कह समुद्र राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से रास्ता मांगा था, कहा था मुझे नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लावो गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लावो गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबो गई थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील समुद्र सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबो गई थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रोक्या समुद्र, जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल केवार। वर्द कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल केवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लगा फिर वो पांडा रोवे, काया का गल गया सब चाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण दो पांडे ने पिए, ज्यो की तो फिर होगी खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल है चाल। चरण दो पांडे ने पिए, ज्यो की तो फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी यही होगा आल। एक पत्तल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल। कह जय कोई छुआ छात करेगा उसका भी यही होगा आल। एक पत्तल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया वो है कृष्ण ओ राम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी सपने में दिखे घनश्याम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब जिस पांडे ने उस कबीर परमेश्वर के धक्का मारा था जब उस साहेब का छूत रूप में जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार पर खड़े थे, कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लग गया और इतना भयंकर कोड लग गया सारा चाम चूचू का गिरने लग गया, सब में मवाद फूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। माखी बन के सारा चाम गल गया, शरीर की खाल गल गई। अब उस पांडे जी ने बहुत कोशिश की, अपने देसी दवाइयां भी खाई, प्रभु की आराधनाएं भी की, पूजाएं भी की, जो दोनों को बताता था कि ऐसे कर लो तुम्हें सुख होगा, वो स्वयं कर चुका पर कति आराम नहीं हुआ। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उस पांडे को दर्शन दिए कि उस जिसको तो सूदर समझ रहा था नादान, वो परमेश्वर है, और पैर पकड़ दे जाकर उसके अक्षमा याचना कर ले, जैसे वो कहे ऐसे करना भाई, नहीं तो ये तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रधानमंत्री के ऑर्डर ने एक विभाग एक प्रांत का मंत्री कैसे बदल सके, वही चेंज कर सकता है अपने आदेश को, वही बदल सकता है। अब सुबह उठा वो पांडा लेकर 10-5 पांडवों को और ढूंढ तलाश करी प्रभु की, वहीं बैठे मिल गए, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े और कबीर साहब आगे आगे चल रहे हैं कि मुझे मत छेड़ना, मैं अछूत हूँ, दूर रहना पांडे जी मैं अछूत हूँ। तब रोने लग गया खड़ा होकर वो पांडे, जैसे बालक रोया करे बुरी तरह, ये दाता मेरे तो गलती होगी, माफ करो प्रभु मुझे माफ कर दो। क्योंकि जिसका ये हो जाना बीमारी, जब पता चला कितना मंत्र कितना संत है, इतने समय पर टूक मिले, पिछली भक्ति कमाई ठीक चल रही है, तब तक तो ये अपने आप में खूब प्रभु पाके रहेंगे, और जब दुर्गति का समय आओगे अदरक मारेगा। एक मंत को देखा अदरक मार गया और पहले आंडी पा गया था, भक्ति गलत करें फिर अंत में बुरा हाल हो इनका। तो इसलिए हमने अभी सोचना होगा कि कहीं वो सतीथी फिर हमारी बिना बिगड़ जाए। अब जब उस पांडे जी की हालत होगी, अब उसको रो दूर तो खड़ा होकर उस जिसको अछूत कहता था, जिसके धक्का दिया था, अब उसके चरणों में गिरना चाहता और वो दूर हो रहे है। जब बुरी तरह रोने लग गया बैठ गया, कभी नजदीक नहीं आने देंगे, तब कभी साहब खड़े हो गए, बैठ गए एक स्थान पर, स्थिर हो गए, डट गए, रुक गए। तब पांडे ने जाके चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े पैर पकड़े, मुझे माफी दो भगवान मेरी तो गलती होगी। तब कबीर साहब ने कहा कि बात सुन ले भाई, अब वो कहता है पांडा के मुझे चरणों का जल दे दो दाता, मैं इसे स्नान कर लूं, आपके चरणों का रज भरा जल दे दो मुझे, मेरा कोड कट जा। कबीर साहब बोले भाई कोड तो कटेगा, ठीक है मेरे आशीर्वाद है, और आप यहाँ पर मेरी बात सुनो पहले। हाँ जी बता दो, इस जगन्नाथ के मंदिर में आज के बाद छुआछात नहीं होगी। अगर जिसने भी कोई छुआछात करने की कोशिश की है उसकी ये हालत हो जाएगी, उससे भी बुरी हालत हो सकती है, कोई और भी घटना घट सकती है। उन पांडे ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, अक्षमा याचना की, प्रभु कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है, और आज नहीं सदा के लिए ऐसा ही होगा, अगली सदा के लिए होगा। तब कबीर साहब के पैर धोए और कहा कि 40 दिन इस जल से नहाते रहना। कबीर साहब ने कर तो वो वैसे भी सकते थे, परंतु हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कहने लगा 40 दिन नहाना इसे, इस जल को डाल के। अब ऐसे उसने प्रारंभ किया तो रोजाना कोड समाप्त होता चला गया, 40वें दिन बिल्कुल स्वस्थ काया होगी। अब इस प्रकार उस जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी छुआ छात नहीं है, कोई भी जाति का किसी मजहब का कोई व्यक्ति जावे। और जबकि आज से 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पूर्व किसी मंदिर में कोई अछूत व्यक्ति नजदीक भी नहीं जा सकता था, उस मंदिर में कभी भी छुआ छात नहीं है, तो ऐसा क्यों? अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे नाथ को शास्त्र समझ में आवे ना हमारी भक्ति सुचारू हो, क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से एक छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। तो ये दास एक बार ये देखने के लिए गया, कुछ हमारे साथ सेवक थे, तो हमने वहां जाकर देखा, वहां कबीर चौरा नाम का एक आश्रम बना हुआ है, और जहां पर कबीर साहब ने बैठकर समुद्र को रोका था वहां पर एक चबूतरा यानी पत्थर नीचे रखा है, उसके ऊपर एक यादगार बना रखा है, गुम्बद सा बना रखा है कि ये ऐतिहासिक स्थल कोई बर्बाद ना कर दे, ये प्रमाण बना रहे, इसलिए उसके ऊपर एक गुम्बद सा बना देते हैं। वहां घंटी घुंटी नहीं बांध रखी, उसकी पूजा नहीं होती, वो तो सिर्फ केवल ये बनाए यादगार बनी रहे सदा के लिए, ये प्रमाण रहे कि वास्तव में ये ऐतिहासिक जो है ना कहानी यहाँ पर वास्तव में सत्य थी। और उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है, उसको महंत कहते हैं, वो रखवाले होते हैं उस ऐतिहासिक स्थलों के। अब वो नादान स्वयं महंत बन गया, आप पूजा करवाने लग गए, अपने दंडवत कराने लग गए और फिर नाम देने लगे, ये बात नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रभु उठा के भूखे हम प्रभु के नहीं है। महंत तो केवल एक रखवाले होते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों का मेंटेनेंस कराने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, और उनका बस इतना ही काम होता है। तो वहां हम उस महंत जी से मिले, उन्होंने बताया कि हमारी कई पीढ़ी से इसमें रहते हुए आ रहे हैं, वहां 10-15 कमरे भी बने हुए आने वाले अतिथियों को रुकने के लिए। और वहां उन्होंने एक दान पात्र रखा है, उसमें 10-5 रुपए डाल देते हैं। वो इसलिए कर पहले जो महंत होते थे बड़े नेक होया करते, प्रभु से डरने वाले होते थे, जो पूजा आ जाती केवल अपनी रोजी रोटी की रखकर बाकी का मंदिर में लगा देते, उस आश्रम की मेंटेनेंस में लगा देते या कितना अपना भंडारा कर देते थे। अब वर्तमान के जो लोग हो गए, अब नाम भी देने लग गए और स्वयं महंत बनकर गुरु बन गए, नाम काय का ज्ञान उनको, शास्त्र विरुद्ध साधना बताने लगे, क्योंकि शिष्यों का समूह चाहिए और शिष्य तो हमें पाचा परमानेंट व इनकम हो जाती है, और वैसे तो कोई दार्शनिक आवे कभी 10 रुपए चढ़ा जाए कभी ना चढ़ावे, ये समस्या हल कर ली इन्होंने आप पे कि चेले शिष्य बन जाएंगे तो वो आए महीने या साल में 6 महीने में जरूर आया करेंगे, मेले दर दिए उस तरह वो ड्रामा बना लिया अपनी रोजी रोटी को, मतलब और ज्यादा कर्म बिगाड़ने का। तो ऐसे वो परंपरागत उस महंत जी ने वहां बताया कि हमारी काफी पीढ़ियां पीछे से ऐसे आती रही हैं और मैं अब वर्तमान में हूं, वो काफी वृद्ध हैं, वहां पर 80-75 साल की आयु अवश्य होगी। उसने फिर बताया वो जो दास ने पढ़ा था सुना था जो कहते बताए कि ऐसी ही है। फिर हम उस मंदिर में गए, वहां देखा वहां कोई मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति तो एक तरफ रखी है, वहां तो कोई जा नहीं सकता, उसे 10 फुट दूर ही रहना पड़ता है, एक ऐसे वो बना रखा है, एक बैरियर सा बना रखा उसमें पाइप सी गार्ड के, और वहां कोई पूजा नहीं होती मूर्ति की। अब वहां वो पांडे झाड़ा लगाते हैं पानी से चंदे बेकर, और नू आ जाओ लगवा लो धर दो 10 रुपए, ये उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन ये प्रारंभ नहीं था भक्ति का। तो हमने वहां पर पूछा उन पांडों से कि यहाँ पर छुआछात क्यों नहीं होती, अन्य मंदिरों में तो कोई कुछ नहीं देता था पहले शूद्रों को अन्य जाति वालों को, तो वो कहने लगे पता ये प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा यहाँ क्यों हुई, अन्य मंदिरों में क्यों नहीं हुई। फिर हमने पूछा कि सुना ये मंदिर पहले समुद्र ने कई बार तोड़ा था। वो कहने लगे हाँ एक दो बार तोड़ा था, सुना है हमने भी। फिर किसने रोका समुद्र को कि भगवान प्रभु की कृपा से रुक गया। जब वो तीन बार टूटा जब ये प्रभु कहाँ गए थे आपके। अब ये वो सच्चाई तो सामने आने नहीं देते क्योंकि कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। और जब तक मूल मालिक को मालिक नहीं मानेंगे, जब तक हम जड़ की सिंचाई नहीं करेंगे और जड़ को नीचे नहीं डालेंगे जमीन में, तब तक पौधा भक्ति रूपी हमारा सफल नहीं हो सकता। ये जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की सत्य कथा है। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी ने रामानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, चैलेंज किया और कहा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। रामानंद जी कौन थे? कबीर परमेश्वर के पूज्य गुरुदेव, और बाद में कबीर साहब की समर्थता को जानकर रामानंद जी ने कबीर साहब को ही अपना हृदय से गुरु मान लिया था और संसार की दृष्टि से वो गुरु शिष्य का नाता कबीर साहब के गुरुदेव रामानंद जी ही जाने जाते हैं। तो उसमें रामानंद जी को आकर के उन्होंने गोरखनाथ जी ने चैलेंज किया, अर्थात संदेशा भिजवाया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, ज्ञान गोष्ठी करो, और जो ज्ञान गोष्ठी में पराजित हो जाएगा वो विजयी होने वाले का शिष्य बनेगा और उसने उसी की परंपरा को स्वीकार करना होगा। इब गोरखनाथ जी ये शिव उपासक और रामानंद जी थे विष्णु उपासक, ये आपस में लड़े, वो कह शिव जी बड़े, वो कह विष्णु जी बड़े। अब एक विभाग के मंत्री, तीन मंत्री हैं, वो एमएलए होते हैं, एमएलए से फिर उनको सीएम मुख्यमंत्री उनको मंत्री बना देता है। बताओ ना बड़ा और छोटा क्या हो गया बिना बुद्धि के, और विद्वान कवाए। तो ऐसे अब यहाँ शंका और आती है भक्तों के मन में कि गोरखनाथ जी तो बहुत पहले हुए थे, लगभग 900 वर्ष पूर्व, और कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व हुए हैं। अब बात ये है कि ये सिद्ध पुरुष होते हैं, जब चाहे अपना स्वरूप ऐसे दिखा सकते हैं, पर तब चाहे सूक्ष्म होकर अंतर्ध्यान हो सकते हैं, ये अपने शरीर समेत भी रह सकते हैं कुछ समय और जा सकते हैं। ऐसे रामानंद जी को उस गोरखनाथ जी ने ही स्वयं आकर के ललकारा था। अब इस बात के मारे सभी वैष्णव जो रामानंद जी के ऋषि शिष्य थे वो घबरा गए कि गोरखनाथ विजयी होगा, वो सिद्ध पुरुष है, दुनिया तो सिद्धि को देखकर ताड़ी पीट देगी और वो विजयी होगा, गुरुजी हारेंगे रामानंद जी, और फिर हमारी ये कंठी और तलक सब तुड़वा करके वो कानों में वो नाथ बना देगा हमें। इसलिए उन्होंने किसी ने भी उस दिन ना तिलक लगाया, अपना वैष्णु साधु जैसा वेश नहीं बनाया, संत जैसा। तब कबीर साहब ने देखा कि ये तो बखत से सिंगर लिया करते थे, सारे चित्रकारी कर लेते थे, आज क्या बात है, ये कोई भी नहीं तिलक लगाए हुए और ना ही कंठी पहन रखी। पता चला कि ऐसे ऐसे गोरखनाथ जी ने कभी अपने गुरुदेव को ललकारा है और वो सिद्ध पुरुष है। उसने कहा कि जो हार जाएगा रामानंद जी तो सभी वैष्णव को मैं नाथ बनाऊंगा, इसलिए हमने आज तिलक नहीं लगाया। कबीर साहब जी कहने लगे लगाओ, अपने पूरे श्रृंगार करो, चलो तुम्हारे पास भक्ति तो है नहीं पर तुम ड्रामा तो करते ही हो, पर करो आज भी, क्यों घबराते हो, जो होगा सो देखा जाएगा। कबीर साहब गए रामानंद जी के पास और कहा पूज्य गुरुदेव, सुना है गोरखनाथ जी ने ऐसे ऐसे हमें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। रामानंद जी कहने लगे भाई बुलाया तो है बच्चा, फिर क्या करे, वो तो सिद्ध पुरुष है और दुनिया इन ड्रामों को ज्यादा मानती है, जिसने थोड़ी सी सिद्धि दिखा दी बस उसी के पीछे हो लेते हैं, ये बात बिगड़ेगी। कबीर साहब ने कहा देखो पूज्य गुरुदेव जी, आप तो जान ही जान हो, आपका दास एक प्रार्थना कर सकता है, गुरुदेव देखी जाएगी, हारेंगे, हार जीत तो होती ही है, कुछ हो सके जनता को समझ में आ जावे। तो इस बात को सुनकर रामानंद जी समझ गया कि जब कबीर साहब ने कह दिया तो कोई खतरा नहीं, ये तो परम शक्ति युक्त है। कहने लगा ठीक अभी चलते हैं, चले गए। और वहाँ पर जहाँ निश्चित स्थल था वहाँ आसन लगा दिया रामानंद जी का अलग से, और गोरखनाथ जी जमीन पर अपना एक मृगशाला बिछा के और साथ में एक त्रिशूल गाइड रखा 6-7 फुट ऊंचा, ऊपर 3 उसके सींग से होते हैं, और स्वयं जमीन पर आसन लगा करके मतलब मृगशाला बिछा करके आसन अलग से लगा हुआ था वहाँ बैठे, और कबीर रामानंद जी का आसन अलग से लगा दिया, और कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में उनके आसन के नीचे बैठ गए। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे साथ चर्चा करो और प्रसन्न करो मेरे तह। कबीर साहब ने कहा कि पहले गोरखनाथ जी इस दास से चर्चा करो, बाद में मेरे गुरुदेव से बात करो। पहले इस मटके का जल चेक कर लो कैसा है, बाद में कुएं का पी देख लेना। जो मटके का जैसा मिलेगा वैसा ही उस कुएं से भरा हुआ समझो। ऐसे उदाहरण देकर के अर्थात ये बात कबीर साहब ने कहा। तब छोटी सी उम्र के बच्चे को देख करके गोरखनाथ कहता है, अरे कल का बालक तू कब से ये सन्यासी बन गया। कबीर साहब कहने लगे, अगर मेरी आयु पूछा है ना तो मेरी आयु इतनी लंबी है कि तेरे करोड़ों तक ब्रह्मा मर गए, और अरबों तक ब्रह्मा मर गए, करोड़ों मर गए विष्णु, और करोड़ों तेरे शिव शंकर मर गए, मेरी एक करोड़ों तेरे निरंजन मर गए, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी करोड़ों मर गए, मेरी एक भी पल नहीं व्यतीत हुई, अर्थात मैं अजर अविनाशी हूँ। मेरी आयु तो ये है, और मैं कब से वैराग्य बन गया, जब ना धरती थी ना ये चांद और पानी सूरज थे, पांचों तत्व और तीन गुण भी नहीं थे, उस समय मैं था ये मेरा, और उस समय का मैं वैराग्य समझ लो। अब इस बात ने सुनकर गोरखनाथ ने सोचा, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, ऐसे नहीं मानते ये लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। ये सोचकर और वहां से उठा, अपने आसन से ऐसे सिद्धि से ऊपर उठा, खड़ा हो मतलब नीचे से जमीन से ऐसे आसन पद्म लगाए लगे ऐसे आकाश में जैसे पक्षी उड़ा करे, और ऊपर उठकर अपने त्रिशूल जो 7-8 फुट ऊंचा था जमीन से ऊपर का सिरा, उस त्रिशूल के ऊपर यहाँ विराजमान हो गया जाके ऐसे, और वहां बैठकर कहता है कि आ जाओ मेरे बराबर में बैठकर बातें करो। अब सबने ताड़ी पीटी, अकवा जीवा शुद्ध पुरुष गोरखनाथ जी की जय हो। कबीर साहब ने कहा कि नाथ जी आपने ज्ञान चर्चा की बात की थी, ये नाटकबाजी ये जादूगरी दिखाने की बात गोष्ठी में नहीं आती, आपने ज्ञान गोष्ठी की बात कही थी, आ जाओ बात करो बैठ के। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे बराबर बैठकर बात करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बातें बनाते हो। एक दो बार कबीर साहब ने प्रार्थना की पर वो नहीं माने, अपनी सिद्धि के बूते पर ज्यादा ही सद हो गए थे। कबीर साहब एक कुकड़ी बोला कर वो कहते हैं हरियाणे में, जैसे पहले बुढ़िया चरखा काता करती थी, उस पे ताकू के ऊपर एक रील हो जाती थी धागे की, इतनी मोटी कच्चे धागे की, उसको सफेद रील सफेद धागे का एक गट्टा सा होता था, बंडल सा, उसको अपने जेब में डाल ले गए थे, पहले जानी जान थे वो। उस समय कबीर साहब ने अपने जेब से वो धागे की मोटी रील निकाली, उसका एक सिरा पकड़ा धागे का और ऐसे आकाश को भगा दी, वो ऐसे अनलोड होगी अनबंडल होगी तो सीधा एक धागा खड़ा होगा नीचे से लेकर ऊपर तक 150 फुट के दूरी पर, ऊपर जाकर उसका अंतिम सिरा अंतिम छोर था, और वहां और नीचे जमीन पर एक सीधा परपेंडिकुलर खड़ा हो गया ऐसे, और कबीर साहब वहां से उठे अपनी सिद्धि से और ऊपर पहुंचे, सिद्धि के तो मालिक थे, अपनी शक्ति से ऊपर गए और उस धागे के उपले ऊपर वाले छोर पर जो आकाश में 150 फुट ऊंचा था वहां जाकर विराजमान हो गए, और कहा कि आ जाओ नाथ जी मेरे बराबर बैठकर बात करो, बराबर में ही गोष्ठी होती है। तो अब ये बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी और नहीं उड़ सकते थे, और भी उड़ सकते थे, क्योंकि सिद्धि एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी जल का पैर का पानी ना लगे, और एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर ऐसे चले जल के ऊपर जैसे थल पर चलते हैं, लेकिन इन सिद्धियों से भगवान प्राप्ति नहीं। इन सिद्धियों के होने से प्रभु प्राप्ति का लक्षण नहीं माना जाता। जब तक सत भक्ति नहीं होगी, विधिवत साधना नहीं होगी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होगी, सिद्धियां तो कोई एक मंत्र का जाप कर ले या वैसे तप कर ले बैठ कर तो भी आ जाती है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्ष तप किया था, जब तक तो उन्हें वेदों का ज्ञान भी नहीं था और अपना जब करते तब करने से उन्हें सिद्धि आ गई, दृष्टि खुल जाती है। पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, पिछले जन्मों की कमाई भी साथ होती है, जो विधिवत साधना होती है वो भी काम करती है। अब कहते हैं ना वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, यहाँ वास्तव में तात्पर्य यह होता है कि उस बुरे कर्म तो उल्टा हो गया, बुराई छोड़ दी और महर्षि यानी साधना करने लग गया, उल्टा उस बुरे कर्म तो उलट गया और फिर नाम के जपा, उल्टा नाम जपा जब जाना, क्या नाम जपा, ओम नाम का जाप। बताते हैं कि ओम नाम का जाप क्या, चलो यही मानकर चलते हैं। तो ओम नाम के जाप से भी केवल सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि अब गोरखनाथ सिद्ध पुरुष हो रहे थे अपने पिछले संस्कार में, तो सिद्धि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती और हम जो तो थोड़ा सा कोई जादूगरी दिखाते हैं हम उसको प्रभु मान बैठते हैं। अब गोरखनाथ जी ने कोशिश की ऊपर उड़ने की, चलने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर आकर बैठ गया, उस त्रिशूल से नीचे उतर गया, ऊपर तो जाना दूर रहा, नीचे टिक गया आकर। अब ये बात नहीं कि वो आकाश में और आगे नहीं जा सकता था, ये सिद्धि थी उसमें आकाश में उड़ जाने की और फिर दूर तक चला जाने की, लेकिन परमात्मा के सामने वह सिद्धि फेल होगी। अब सिद्धि क्या है, साधना से कुछ नियंत्रित क्रिया बन जाती है आध्यात्मिक कारण बनकर। अब जैसे ये घड़ी बनी हुई है, इस घड़ी में सुई चल रही है और ये स्टील की है और इसको सामने अगर चुंबक लाकर रख देना थोड़ी सी इतनी दूरी पर भी, तो ये वही जाम हो जाती, आगे नहीं चलेगी। ऐसे एक परमात्मा के सामने ये सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती है। जब गोरखनाथ जी ने देख लिया कि तेरे बस से बाहर नहीं, ये तो कोई तगड़ी शक्ति है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, तो समझदार व्यक्ति इतने इशारे में ही पकड़ जाता है और कहा कि परवरदिगार नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं समझ गया आपको। कबीर साहब नीचे आए, एक दो बातें प्रश्न किया, बिल्कुल ठीक समझ गया। कबीर साहब ने कहा कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा, जिसको तुम सर्वस्व मानते हो, ब्रह्म मानते हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हो, ये तो ये भी मेरा जाप जपता है। गीता जी के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में देखो, उसमें कहा कि वो पूर्ण परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। ये 64वां गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 64 में देखिएगा, ये साथ में ही है, ये 65 है, इधर 64 है। ये क्या कहा कि सर्व गुहतम भूय शरणु शरणु में परमम वच। अब और पहले तो बता दिया ऊपर, ये गुप्त से गुप्त मैंने बेहतरे को बता दिया कि उस परमात्मा के चरणों में चला जा, वहां जाकर तू परम शांति को प्राप्त होगा। अब फिर इसमें कहता है कि मैं गुप्त से और गुप्त एक बात बताऊं तेरे तय अर्जुन, ये तेरे हित में कहता हूं कि वो इति माने यह है, इति का अर्थ इन्होंने यही कहा है, इति माने यह है, इति माने यह है पूर्ण परमात्मा ही, मे माने मेरा, दृढ़ मन सुनिश्चित, इष्ट माने इष्ट देव, पूज्य देव असी माने है। मैं तेरे हित में बताऊं बता रहा हूँ कि ये का पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा, वो तत्परम परम अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं तेरा जो स्वरूपी अलख निरंजन ये जपता नाम हमारा, वो भी मेरा ही, मेरा धरता ध्यान हमारा, हमारा ध्यान रक्त करता है, वो हमारा ध्यान करता है। अब जैसे प्रश्न था ना कि वाल्मीकि जी ने मरा 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 राम राम करने लगा, अब चाहे कोई मंत्र कर लो किसी भी नाम का, चेहरा दुष्वाम रोष्वाम सीताराम सीताराम कर लो, पर इससे उत्तप से सिद्धि आती है, नाम से नहीं आती। उसकी तप की साधना से सिद्धि आ जाती है, वो बैठ कर मेडिटेशन करने तक कुछ एक फल मिलता है उसका, कुछ सिद्धियां आ जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती नामों से। कोई भी नाम का मंत्र है उसकी आराधना कर लो, लेकिन उसे अन्य वो तो और उपलब्धि हो जाएगी। जैसे आम की जगह पर किक्कर का बीज बीज लिया, वो भी उगेगा और उसका फिर फल वो नहीं होगा जो आम वाला होगा, ऐसे। तो इस बात को गोरखनाथ कहने लगे, जी एक बात बताओ, मैं आपकी एक परीक्षा और लेना चाहता हूँ, फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगा अपने गुरुदेव रूप में। तो कबीर साहब ने कहा वो भी कसर निकाल ले भाई, अपनी सारी शंका मिटा ले, कि ये साथ में दो किले पर गंगा थी जहाँ ये गोष्ठी हो रही थी, कि गंगा पर चलो एक बार। कबीर साहब वहां गंगा पर चले गए, दर्शक भी पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने गंगा में गोता लगाया और वहां पर मछली का रूप बना लिया और पहले कहा कि मुझे ढूंढ देना, मैं इसमें गोता लगाऊंगा तो मैं तुझे अपना गुरुदेव मान लूंगा। अब अंदर जाकर के गोरखनाथ जी ने एक मछली का रूप बना लिया, गोता लगा के, डुबकी लगा करके गंगा में। कबीर साहब ने पकड़ के वो मछली और बाहर लाके गोरखनाथ बनाकर बैठा दिया पटड़ी पे। तब गोरखनाथ जी ने चरणों में शीश टेक दिया और नाम लिया, उपदेश लिया अपने प्रभु ते। तब कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला फूला टूणा टामन टूणा, गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूणे टामन हांड फूला। ये सिद्धियों को तो टूणे टामन बताए संतों ने, ये भक्ति के लक्षण नहीं है। आजा गोरख शरण हमारी, हम सतगुरु तारे नर और नारी। गोरखनाथ में सबन का गुरुआ कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि गोरखनाथ में जगत गुरु, मैं बृहस्पति हूँ, वास्तव में मैं सबका गुरु हूँ। तब गोरखनाथ जी ने कहा था कि तेरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तू गलत कह रहा है, मुझे तेरी बातें कड़वी लगती है, तेरा वचन मुझे लग गया कड़वा। तो कबीर साहब ने कहा कि कड़वा लगा वो मीठा हुई, हमारी बात पति जज हुई। जैसे ये दास अब कड़वी कड़वी कैप्सूल कुनीन खिला रहा आपको, क्योंकि अभी तक आप सत ज्ञान ना होने से असत ज्ञान तक रोग ग्रस्त हो, और ये कड़वी कड़वी कैप्सूल आप खाते रहो, ये सच्चाई सुनते रहो, एक दिन वो दिन आवेगा आप स्वस्थ हो जाओगे और ये इतनी मीठी बनेगी आपको कोई और चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अस्वस्थ व्यक्ति कड़वी कड़वी गोलियां अस्वस्थ व्यक्ति कड़वी कड़वी गोलियां खाकर स्वस्थ हो जाता है, पहले उसको रोटियां कड़वी लगती हैं, फिर वो मीठी लगती है। कबीर साहब ने बताया, नाथ जी ने पूछा था कब के भये बरागी, कबीर जी कब से भये बरागी, तुम कब से ये वैष्णव बन गया, कब से भक्त बना तू। नाथ जी जब से भये बरागी मेरी आद अंत सुध लगी, धुंधकार आद का मेला नहीं गुरु ना कोई था चेला, जब मैं अकेला था तब जब का तो हम योग उपास्या तब का फिरूं अकेला, धरती ने जब की टोपी दी ना ब्रह्मा ने जत का टीका, अर्थ शिव शंकर से योगी ना थे जब का झोड़ी सिखा, द्वापर की हम करी फावड़ी त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फरे दुहाई कलयुग फिरू नो खंडा, और गुरु के वचन कर साध की संगत ऐसे अजर अमर घर पावे, कह कभी सुनो हो गोरख हम सबको तकत तत्व लखाव, हम सबको ही सत्ज्ञान देते हैं। अब जब आयु के बारे में पूछा था, उसके बारे में कबीर साहब की वाणी है कि क्या है उम्र तुम्हारी, गोरखनाथ जी ने पूछा था तो बताया था कि जो कोई पूछे बावरा क्या है उम्र हमारी, संख असंख युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, ये करोड़ निरंजन हो गए परलोक से दारी, हम तो सदा महबूब हैं ये सो हम ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्म आ गए 49 कोट कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पनैया। ये तेरे जो अजर अमर कहलाते कहते हो ना शिव जी मृत्युंजय है मृत्युंजय है, उसको वो तो नहीं हो गए 7 करोड़ मर गए, वैसे तो ये और ज्यादा खत्म हो जाते हैं, कहते मेरी एक नहीं पनैया। अब यही सोचकर चलो अभी, क्योंकि ये पीएचडी की बातें आएगी थोड़े से दिनों में आपके सामने, तब आपकी ये बुद्धि और ज्यादा काम करने लग जाएगी इस ज्ञान के आधार पर। अब ये शिवजी को अजर अमर कैसे मान लिया अनजानों ने, कि ब्रह्मा की आयु 100 युग है, 100 वर्ष की है, एक इन देवताओं का देव वर्ष कैसे होता है, 1000 चतुर्युग की, वैसे तो ये 72 चौकड़ी युग होते हैं, 1008 चतुर्युग बनते हैं, लेकिन सीधा सा लेकर चलते हैं, 1000 चतुर्युग का दिन 1000 चतुर्युग की रात ब्रह्मा जी की हुई। एक दिन रात हो गए 2000 चतुर्युग के, एक महीना हो गया 60000 चतुर्युग का, और एक वर्ष हो गया 7,20,000 चतुर्युग का, और इसको 100 से गुणा कर दे, इसको 100 से गुणा कर दिया, 7,20,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की कुल आयु होगी। और ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाओगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु मर जाएंगे तब एक शिव का, इस रुद्र की मृत्यु होगी, लेकिन मरेगा फिर भी, एति उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, ये सतगुण लगे ना कान न भेटे संतरे, इतनी भी लंबी आयु जिसके कारण तुमने शिव जी को मृत्युंजय मान रखा है, इसकी भी मृत्यु होगी, इतनी भी लंबी उम्र होगी तो भी मरोगे, क्यों मरोगे, क्योंकि तुमको पूर्ण संत नहीं मिला जो इस जन्म मरण के झंझट में काट दे। तो कबीर साहब से गोरखनाथ जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहां से आए हो, ये तो पहली बार ज्ञान सुनाया आपने, क्योंकि सृष्टि रचना का पूरा वर्णन सुना गोरखनाथ जी को, जब तक हम सृष्टि रचना नहीं सुनेंगे, जब तक हम इसको सत नहीं मान लेंगे, तब तक हमारी बुद्धि भक्ति मार्ग में सुचारू हो नहीं सकती, ना शास्त्र समझ में आवे, तो ये जरूरी समझना होगा, इसलिए ये दास बार बार आपको सृष्टि रचना सुनाता हुआ आ रहा है, और उसको सुनते रहना, ध्यान से याद करो। क्या बताया, अवधूत, अवधू, अवधू कहते हैं जो अवधूत बन जाते हैं, केवल एक तन पर लंगोट या उसके ऊपर एक छोटा सा पर्दे पर कपड़ा बांध लेते हैं, बाकी नी वस्त्र रहते हैं, उनको अवधूत कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं अवधू, गोरखनाथ जी से कबीर साहब कह रहे हैं, अवधू अवगत से चले आए, हम तो उस स्थान से है जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, अविगत, नाम ना मेरा गर्भ ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाए काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाहे न पाए, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक मन दिखलाए दिखलाया काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, दुल्हा का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हसी, ना मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, मेरा पत्नी भी नहीं है, जुल्हा का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हसी, अरिया जुलाहे का बेटा कवाया मैं, दड़ नहीं गगन कछु नहीं सूज अगम अप गर नहीं, दड़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं सूज अगम अपारा, वो सत स्वरूपी नाम साहेब का वो है नाम हमारा, जो वास्तविक नाम है ना परमात्मा का, कबीर साहब कबीर देव है, वही मेरा नाम, वास्तव में वही नाम है मेरा, अब मैं उसी नाम को लेकर के आया हूँ, दड़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं सूज अगम अपारा, ये सत स्वरूपी नाम साहेब का वो ही नाम हमारा, अधम अधर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो भी जपता धरता ध्यान हमारा, अधर द्वीप सतलोक में अधर द्वीप वहाँ गगन गुफा है तानिज वस्तु सारा, वास्तव में मैं वहाँ रहता हूँ, और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये जब दरता ध्यान हमारा, ये तेरा ज्योत निरंजन ये काल भगवान गीता में कहता मैं सब न खाऊंगा है, और वो भी कहता मेरा भी पूज्य देव वो वही परमेश्वर है, उसकी शरण में जातु अर्जुन। अब गीता जी के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक आपने देखा, आड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता नु कह कबीर अविनाशी, हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम का नहीं है, तेज पुंज का है, जैसे गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तंदे धर के इस विध हमको भेटी, हाड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, ये तरण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी ही, मैं ही वो कबीर अविनाशी कबीर देव जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। वास्तव में उत्तम पुरुष तो अविनाश अन्य है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो मैं हूँ। इस बात को आज के कलियुगी ऋषि और संत नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी बुद्धि शास्त्र विरुद्ध चल रही है। न इनको शास्त्रों का ज्ञान इनमें लिखा क्या है, और सारे समाज को अपनी मीठी मीठी बात बना के सुनी सुनाई अटकलों पटकाए बैठे हैं। अब चाहिए इन महापुरुषों ने फिर दोबारा इन शास्त्रों को देखें, और सत व्यक्ति इनके पास नहीं है बिल्कुल भी, न इनके पास नाम है, न इनकी विधि ठीक है, और न इनको पूर्ण ज्ञान ही नहीं। तुम ले जा कहां रहे हो, तुमने जाना कहां है, भगवान को निराकार बतावे। तो उसके बाद गोरखनाथ जी ने कबीर साहब का उपदेश ले लिया और कहते हैं कबीर गुरु और गोरख चेला, इवनों खंड में फिरे अकेला। अब वो गोरखनाथ जी को सतनाम मिला, अभी सारनाम नहीं मिला उसको, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। अब यही गोरखनाथ जी फिर दोबारा सतयुग में जन्म होगा और दिल्ली का बादशाह बनेगा। 1,00,000 वर्ष तक दिल्ली का राज गोरखनाथ जी दोबारा आके और सारे काम करेगा, शादी करवाएगा और फिर यहाँ का राजा बनेगा, और फिर ये वैराग देगा, और ये कबीर परमेश्वर उसको फिर मिलेगा आके, और फिर उसको सतनाम सारनाम देगा, फिर ये मुक्त होगा। लेकिन ये पढ़ाई शुरू होगी, इस सच्चे नाम जो मिल गया इसमें इतनी शक्ति है, मनुष्य शरीर मिलेगा और सारी मौज होगी, और साथ में फिर अगर इसी जीवन में योग्य होगी तो तुरंत अभी मिल जाएगा सारनाम को, ज्यादा देर नहीं लगेंगे। कबीर साहब कहते हैं जीवन त थोड़ा भला जय सत सुमरण होवे, 1,00,000 वर्ष का जीवन लेख धर ना कोवे। अब सत सुमरण और सत भक्ति सत नाम पूरी श्रद्धा नियमानुसार और पूरा गुरु से प्राप्त करके यदि प्राणी करता है तो कोई लंबा समय नहीं लगता, इसमें शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अब सत्संग को सुनकर प्रत्येक आत्मा में प्रभु के प्रति एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक समय ये दास कहीं सत्संग कर रहा था किसी के घर पे, उनका बुजुर्ग पिता लगभग उनकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी थी और वो भी सत्संग सुन रहा था। सत्संग सुनने के बाद उस प्यारी आत्मा ने उनके पिताजी ने पूछा, आंखों में पानी भर के कहने लगा, महाराज जी मैं तो सारी उम्र अपने काम काज में लगा रहा और मैंने तो जीवन में पहली बार ये विचार सुने हैं परमात्मा के बारे में। अब मुझे ये मुश्किल हो रही है परमात्मा मेरे साथ बनेगा कि सारा जीवन खो दिया, सारा जीवन इतना काम किया और प्रभु के बारे में हमें ज्ञान नहीं हुआ और अपने लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए सब कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए का तात्पर्य है भविष्य के लिए। और कहने लगा, आंखों में पानी भरकर बुजुर्ग आदमी, कि अब क्या बने मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ। मैंने कहा, भक्तात्मा चिंता मत करो, आप अब उपदेश ले लो और अब भी बात बन जाएगी। वो कहता, जी अब कैसे बात बनेगी, आयु तो बहुत कम रह रही है, अब तो नहीं बने बात है। मैंने कहा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये शरीर पुराना हुआ है और जीव जो का क्यों है, ये अभी पुराना नहीं होता हुआ है, इसका तो फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, ना विरक्त कितने कहोगे। यदि आज भी आप इस सत भक्ति को स्वीकार कर लोगे तो समझो आपका जीवन सफल होगा, आपको मानव शरीर प्राप्त होगा और धीरे धीरे ऐसे ये भक्ति बढ़ जाएगी। अब जैसे किसी कूप में, जिसे अंग्रेजी में वेल कहते हैं, वेल कुएं में, और वो पात्र वो बाल्टी गिर रही हो, जिस वो रस्सी बंधी हुई होती है जिससे पानी निकाला करते हैं ऐसे खेंच खेंच कर, और वो गिर बाल्टी गिर गई है, हाथ से रस्सी छूट चुकी है और रस्सी ऐसे ऐसे घसीटती हुई घिसरती हुई जा रही है और कुएं में जा रहे हैं। यदि भाग ले, कोशिश कर ले, हाथ पैर मारे और वो छोटी सी अगर एक फुट की भी रस्सी बाकी रह रही हो गिरने से पहले वो मिल जावे तो कुछ भी नहीं गया, पानी भी आ गया और रस्सी भी और बाल्टी भी सारी आएगी। इसी प्रकार यदि अब भी उपदेश ले लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ा आपके जीवन का, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये मनुष्य शरीर तो न जाने कितने का अपने पर खो दिए, अब प्रारंभ कर लो, ये बीज भी आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो जाएगा और फिर ऐसे धीरे धीरे पार हो जाओगे। ऐसी समझ मायूस गए, ओक्का बीड़ी शराब सब छोड़ दी। बोले जी मांस तो कभी खाया नहीं और शराब भी विशेष नहीं पी, कभी ब्याह शादी में ले ली थी, पी ली थी, और हुक्का बहुत पिया मैंने। उसी दिन से हुक्का शराब दोनों त्याग दी, तमाकू प्रयोग जीवन भर नहीं किया उसके बाद, और नाम ले लिया। फिर वो 8 वर्ष के बाद उसका प्राण छूटे, इतने खूब भक्ति की। घरवाले कहा करते जी ये तो उस मंत्र को जपता ही रहता है, और बेड़ा पार हो गया उसका, बड़ा प्यार से शरीर छोड़ गया अंत में बैठा बैठा, और बोलता बोलता सत साहिब कहते कहते और प्राण त्याग गया।